एकत्र ज्ञानगोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानगोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते, मैं हूं आपका साथी मेजबान और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने सही में हमारे सोचने के तरीके को हिला दिया।
और मैं हूं आपकी दूसरी साथी मेजबान। आज की किताब है सिगमंड फ्रॉयड की द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, मतलब स्वप्नों की व्याख्या। ये किताब 1900 में आई थी, सोचिए 100 साल से भी ज्यादा पुरानी।
हाँ, पर कमाल की बात यह है कि आज भी ये उतनी चर्चा में है। सवाल तो वही रहता है, ये जो अजीब अजीब सपने हम देखते हैं, इनका कोई मतलब भी है या बस दिमाग का कचरा?
बिल्कुल, क्या ये वाकई हमारे मन की गहराइयों के राज खोल सकते हैं? ऐसा लगता है जैसे फ्रॉयड ने हमें अपने मन के अंदर झांकने की कोई चाबी देने की कोशिश की हो।
सही कहा। तो आज देखेंगे कि ये चाबी कितनी कारगर है, क्या वाकई इससे कुछ ताले खुलते हैं।
तो चलिए पहले मिलते हैं इस सोच के पीछे जो शख्स हैं, सिगमंड फ्रॉयड। 1856 से 1939 तक वियना में एक न्यूरोलॉजिस्ट थे, मतलब दिमाग और नसों के डॉक्टर।
हाँ, और बात यह है कि शुरुआत तो उन्होंने शरीर से की थी, मतलब नर्वस सिस्टम वगैरह से, लेकिन जल्दी उन्हें लगा कि मन की उलझने सिर्फ नसों का खेल नहीं है।
अच्छा।
हाँ, उन्होंने हिस्टीरिया जैसे मामलों पर काम किया, पेरिस में डॉक्टर चारकॉट के साथ भी काम किया, पर सबसे अनोखी बात है उनका खुद पर किया गया विश्लेषण।
आप उनके अपने सपनों के विश्लेषण की बात कर रहे हैं?
एग्जैक्टली। उन्होंने बड़ी बारीकी से और कह सकते हैं बड़ी हिम्मत से अपने ही सपनों, अपनी इच्छाओं, अपने डरों को कुरेदा। ये उस जमाने में कोई छोटी बात नहीं थी।
जाहिर है, बहुत हिम्मत चाहिए इसके लिए।
बिल्कुल, और इसी वजह से फ्रॉयड इस टॉपिक पर लिखने के लिए शायद सबसे सही इंसान थे। एक तो वो साइंटिफिक अप्रोच लाए मन को समझने में, दूसरा अपने मरीजों को देखते हुए उन्हें सपनों और उनकी दिमागी हालत में कनेक्शन दिखने लगा था। और तीसरा, वो डरे नहीं, मतलब वर्जित समझे जाने वाले विषयों पर भी खुलकर लिखा। सेक्सुअलिटी, दबी हुई इच्छाएं, वो सिर्फ थ्योरी नहीं बना रहे थे, वो असल जिंदगी से अपने और अपने मरीजों के अनुभवों से सीख रहे थे।
तो इस किताब का, स्वप्नों की व्याख्या का मेन मकसद क्या था? क्या वो सिर्फ सपनों का मतलब बताना चाहते थे?
नहीं, उससे कई ज्यादा बड़ा गोल था। वो ये साबित करना चाहते थे कि सपने बेकार की चीज नहीं है, न ही ये कोई दैवीय संकेत हैं, बल्कि ये हमारे मन की बनाई हुई जटिल रचनाएं हैं जिनका बाकायदा विश्लेषण हो सकता है साइंटिफिक तरीके से।
अच्छा, मतलब सपनों को इज्जत दिलवाना।
हाँ, कह सकते हैं। और उनका सबसे बड़ा दावा
वही इच्छा पूर्ति वाली बात है ना, विश फुलफिलमेंट।
हाँ बिल्कुल, पहला केंद्रीय तर्क यही है कि हर सपना, चाहे वो कितना भी अजीब लगे, डरावना लगे, वो किसी ना किसी दबी हुई छिपी हुई इच्छा को पूरा कर रहा है।
ये बात थोड़ी चौंकाती है, मतलब बुरे सपने भी जिनमें हम डरते हैं?
हाँ, फ्रॉयड का यही कहना था, शायद वो सजा पाने की इच्छा हो, या किसी अपराध बोध से जुड़ी इच्छा, या किसी चिंता से मुक्ति पाने की इच्छा।
हम दिलचस्प। और दूसरा मुख्य विचार?
दूसरा और शायद सबसे फेमस कि सपने हमारे अचेतन मन तक पहुंचने का शाही रास्ता है, द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस।
अचेतन मन, मतलब वो हिस्सा जिसके बारे में हमें पता ही नहीं।
हाँ, हमारे मन का वो विशाल छिपा हुआ तहखाना जहाँ हमारी असली इच्छाएं, डर, बचपन की भूली बिसरी यादें सब दबी पड़ी हैं। फ्रॉयड मानते थे कि सपनों के जरिए हम इस छिपे हुए खजाने तक पहुंच सकते हैं।
तो ये किताब सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं है?
अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो खुद को समझना चाहता है। ये सिर्फ सपनों की बात नहीं है, ये मन कैसे काम करता है उसकी पहली बड़ी तस्वीर है, मनोविश्लेषण की बुनियाद है ये।
चलिए तो फिर थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं फ्रॉयड ने ये सब कैसे समझाया है चैप्टर बाय चैप्टर।
ठीक है, तो पहला चैप्टर, इसमें फ्रॉयड पहले ये देखते हैं कि उनके जमाने तक लोग सपनों के बारे में क्या सोचते थे, पुरानी मान्यताएं, उस वक्त के साइंटिस्ट की थियोरीज।
और वो क्या कहते हैं इनके बारे में?
वो कहते हैं कि ये सब नाकाफी हैं, ये ठीक से समझा नहीं पाते कि सपने क्या हैं, क्यों आते हैं। तो एक तरह से वो स्टेज सेट कर रहे हैं अपनी नई थ्योरी के लिए।
ओके, फिर आता है चैप्टर टू, इसमें वो अपना खास तरीका बताते हैं, मुक्त साहचर्य, फ्री एसोसिएशन।
हाँ, ये उनकी क्रांतिकारी तकनीक थी। सुनने में शायद मुश्किल लगे, पर आइडिया सिंपल है। सपने का कोई भी हिस्सा पकड़ो, कोई इमेज, कोई शब्द, कोई फीलिंग, और फिर बिना किसी रोक टोक के, बिना सोचे समझे, जो भी ख्याल मन में आए उसे आने दो, बस बोलते जाओ या लिखते जाओ, देखो कि ख्यालों की ये लड़ी कहाँ ले जाती है।
अच्छा, जैसे मन की धारा में बहते जाना।
बिल्कुल, और यहीं वो सपने के दो लेवल की बात करते हैं। एक जो हमें याद रहता है, प्रकट सामग्री, मैनिफेस्ट कंटेंट, जो ऊपर ऊपर दिखता है।
और दूसरा?
दूसरा उसका छिपा हुआ मतलब, गुप्त सामग्री,
लेटेंट कंटेंट, जो असल कहानी है पर्दे के पीछे।
ठीक है।
और इसे समझाने के लिए वो अपने ही एक सपने का बड़ा डिटेल्ड विश्लेषण करते हैं, मशहूर इरमा का इंजेक्शन वाला सपना।
हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें तो उन्हें चिंता हो रही थी ना।
हाँ, सपने में चिंता और गड़बड़ का एहसास था, लेकिन विश्लेषण से फ्राइड दिखाते हैं कि कैसे ये चिंता वाला सपना भी असल में उनकी खुद की एक इच्छा पूरी कर रहा था, शायद अपनी किसी गलती के इल्जाम से बरी होने की या खुद को सही साबित करने की। ये मुक्त साहचर्य का पावर दिखाता है।
कमाल है, मतलब जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है। फिर चैप्टर 3 में वो सीधे अपनी मेन बात पर आते हैं, हर सपना इच्छा की पूर्ति है।
हाँ, यहाँ वो पहले आसान उदाहरण देते हैं, जैसे बच्चे सपने में खिलौने देखते हैं या प्यासा आदमी सपने में पानी पीता है। ये तो सीधी सीधी इच्छाएं हैं, ये तो समझ आता है। लेकिन फिर वो मुश्किल सपनों पर आते हैं, डरावने सपने, दुख वाले सपने। ये कैसे इच्छा पूर्ति हो सकती है? ये बात थोड़ी हजम नहीं होती।
यही फ्राइड का तर्क थोड़ा पेचीदा हो जाता है। वो कहते हैं कि ये भी छिपी हुई, अक्सर हमें खुद भी पता ना हो, ऐसी इच्छाओं को पूरा करते हैं।
जैसे कोई उदाहरण?
जैसे मान लीजिए किसी ने अनजाने में कुछ गलत किया और अंदर ही अंदर अपराध बोध है, तो हो सकता है उसे सपने में सजा मिलते हुए दिखे। फ्राइड कहेंगे ये सजा पाने की अचेतन इच्छा है, ताकि अपराध बोध कम हो।
बापरे, ये तो बहुत घुमावदार सोच है।
हाँ, ये फ्रॉइडियन सोच का एक अहम हिस्सा है। सुनना थोड़ा अजीब लग सकता है पहली बार में।
ठीक है, चलिए मान लेते हैं एक पल के लिए कि सपने इच्छाएं पूरी करते हैं। तो फिर चैप्टर 4 का सवाल, ये इतने अजीब क्यों होते हैं, सीधे सीधे क्यों नहीं आते? वो इसे स्वप्न विरूपण, ड्रीम डिस्टॉर्शन कहते हैं।
हाँ, ये बड़ा सवाल है। अगर इच्छा पूरी हो रही है तो सपना इतना उल्टा सीधा, तोड़ा मरोड़ा हुआ क्यों है? इसका जवाब फ्रॉइड देते हैं सेंसर के कॉन्सेप्ट से।
सेंसर मतलब जैसे फिल्मों में होता है?
हाँ, कुछ वैसा ही। सोचिए हमारे मन में एक चौकीदार बैठा है, उसका काम है उन इच्छाओं को बाहर आने से रोकना जो हमारे लिए, समाज के लिए ठीक नहीं है, खासकर गुस्से वाली या सेक्सुअल इच्छाएं।
अच्छा, तो मतलब हमारी असली इच्छाएं इस चौकीदार से बचने के लिए भेष बदल लेती हैं।
क्या बढ़िया कहा, बिल्कुल यही, जैसे कोई नकाब पहन ले। इसी भेष बदलने, इसी डिस्गाइज की वजह से सपने इतने अजीब लगते हैं। ये सेंसरशिप ही सपनों को इतना मिस्टीरियस बनाती है।
कमाल की बात है। तो ये सपनों का कच्चा माल, ये आता कहां से है?
चैप्टर 5 इसी बारे में है।
हाँ,
सपने बनते किन चीजों से हैं? फ्रॉइड कई स्रोत बताते हैं। पहला, दिन के अवशेष।
दिन के अवशेष मतलब?
मतलब पिछले दिन की कोई छोटी मोटी बात, कोई बेकार सा ख्याल जो दिमाग में रह गया हो। ये चीजें सेंसर को आसानी से धोखा दे देती हैं, और फिर ये हमारी गहरी दबी हुई इच्छाओं के लिए एक गाड़ी बन जाती हैं, उन्हें छिपाकर सपने में ले आती हैं।
अरे वाह, मतलब कल की कोई मामूली सी बात आज रात के सपने में आ सकती है, क्योंकि वो किसी बड़ी छिपी बात से जुड़ गई।
बिल्कुल। दूसरा, और फ्रॉइड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, बचपन के अनुभव। उनका मानना था कि हमारी ज्यादातर गहरी इच्छाएं, हमारे कॉम्प्लेक्स, वो बचपन में ही बन जाते हैं, और सपने हमें बार बार वहीं ले जाते हैं।
बचपन।
तीसरा, शारीरिक संवेदनाएं, जैसे सोते हुए प्यास लगना या कहीं दर्द होना, ये भी सपने का हिस्सा बन सकती हैं।
हाँ, ये तो होता है कभी कभी।
और चौथा, वो विशिष्ट सपने, टिपिकल ड्रीम्स की बात करते हैं, वो सपने जो बहुत से लोग देखते हैं, जैसे उड़ने का सपना, गिरने का, एग्जाम में फेल होने का, या भीड़ में नंगे होने का। फ्रॉइड का मानना था कि ये शायद हम सबके कॉमन इंसानी अनुभवों से जुड़े हैं।
ठीक है, अब आता है सबसे टेक्निकल हिस्सा, चैप्टर 6, स्वप्न कार्य, द ड्रीम वर्क। ये कि मन कैसे छिपे हुए विचारों को उस अजीब सपने में बदलता है जो हम देखते हैं।
हाँ, ये समझना बहुत जरूरी है। ये वो मैकेनिज्म है जिससे गुप्त सामग्री प्रकट सामग्री बनती है। फ्राइड 4 मुख्य तरीके बताते हैं।
4 तरीके? अच्छा, बताइए।
पहला है संक्षेपण, कंडेंसेशन, जैसे फाइल को जिप करते ना।
हाँ,
वैसे ही सपने में कई सारे विचार, यादें, भावनाएं सब मिलकर एक ही इमेज या व्यक्ति में कंडेंस हो जाते हैं।
अच्छा,
मतलब एक में अनेक, कॉम्पैक्ट।
दूसरी
है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ये सेंसर को चकमा देने का मास्टर स्ट्रोक है। इसमें होता यह है कि जो भावना असल में किसी जरूरी चीज से जुड़ी है उसे सपने में किसी फालतू सी चीज पर शिफ्ट कर दिया जाता है।
मतलब कैसे?
जैसे मान लीजिए आपको अपने बॉस पर बहुत गुस्सा है, पर सपने में आप देखते हैं कि आप पड़ोस की बिल्ली पर जरा सा छिड़ रहे हैं। गुस्सा वही है, बस उसका टारगेट बदल गया ताकि सेंसर पकड़ ना पाए।
वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। गुस्सा कहीं का, निकला कहीं और।
ये तो असल जिंदगी में भी खूब होता है।
बिल्कुल।
तीसरी तरकीब है प्रतिनिधित्व या चित्रण। सपने ज्यादातर विजुअल होते हैं, फिल्मों जैसे। तो हमारे जो छुपे हुए विचार या भावनाएं हैं, जो अक्सर एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, उन्हें ठोस तस्वीरों में बदलना पड़ता है।
अच्छा।
और इसमें अक्सर प्रतीकात्मक या सिंबलिज्म का इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रॉयड ने कहा कि लंबी चीजें लिंग का प्रतीक हो सकती हैं, बंद जगहें गर्भ का। हालांकि उनकी ये सिंबल्स काफी कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे हैं।
ये प्रतीकों वाली बात तो थोड़ी बहस वाली है। खैर, चौथी प्रक्रिया।
चौथी है माध्यमिक संशोधन, सेकेंडरी रिविजन। जब हम जागते हैं और सपने को याद करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा जगा हुआ लॉजिकल दिमाग उस अजीब कहानी को थोड़ा ठीक ठाक करने की कोशिश करता है, उसे एक लॉजिकल सीक्वेंस देने की कोशिश करता है।
मतलब कहानी को सेंसिबल बनाने की कोशिश।
हाँ, खाली जगह भरता है, कनेक्शन बनाता है। इस चक्कर में वो सपने को थोड़ा और बदल देता है।
बाप रे, मतलब सपना देखना फिर याद करना, ये तो पूरा एक मेंटल जिम्नास्टिक्स है।
और फिर आखिरी चैप्टर 7, जहां फ्रॉयड इन सबको जोड़कर मन का एक मॉडल बनाते हैं।
एग्जैक्टली।
चैप्टर 7 में वो सपनों से मिली जानकारी को पूरे मन पर लागू करते हैं। यहीं वो अपना पहला फेमस मॉडल देते हैं, मन के तीन हिस्से। अचेतन, यू कॉन्शियस, जो हमारी पहुंच से बाहर है। पूर्व चेतन, प्री कॉन्शियस, जहां वो यादें हैं जिन्हें हम कोशिश करके याद कर सकते हैं। और चेतन कॉन्शियस, जिसके बारे में हम अभी अवेयर हैं।
और वो प्लेजर प्रिंसिपल और रियलिटी प्रिंसिपल की बात भी यहीं करते हैं।
हाँ, अचेतन चलता है प्लेजर प्रिंसिपल पर, बस फौरन मजा चाहिए, और चेतन मन रियलिटी प्रिंसिपल पर, दुनिया की हकीकत देखकर।
और सपना देखना एक तरह का रिग्रेशन है, पीछे जाना।
हाँ, सोचने के ज्यादा पुराने, बचकाने, तस्वीरों वाले तरीके पर लौटना। और यही वो अपनी वो मशहूर लाइन कहते हैं, सपनों की व्याख्या अचेतन की गतिविधियों के ज्ञान का शाही मार्ग है।
वाह, क्या सफर था ये। तो अगर हम इस पूरी किताब का निचोड़ निकालें, तो मुख्य बातें क्या होंगी?
मेरे ख्याल से सबसे पहली और जरूरी बात, सपने मीनिंगफुल हैं, बकवास नहीं, उन्हें समझा जा सकता है।
हाँ।
दूसरा, हमारे अंदर एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके बारे में हमें पता नहीं, अचेतन मन, और वो हमारे हर काम, हर सोच पर असर डालता है।
तीसरा, हर सपना किसी ना किसी लेवल पर एक इच्छा पूरी कर रहा है, चाहे वो इच्छा कितनी भी छुपी हुई क्यों ना हो। ये मन का खुद को बैलेंस रखने का तरीका है।
चौथा, हमारे मन में लगातार एक कश्मकश चलती है इच्छाओं और उन्हें दबाने वाले सेंसर के बीच। सपनों का अजीब रूप इसी कश्मकश का नतीजा है।
और पांचवा, बचपन बहुत मैटर करता है। हमारी शुरुआती इच्छाएं, हमारे पहले रिश्ते, वो आज भी हमें और हमारे सपनों को शेप देते हैं। ओडिपस कॉम्प्लेक्स वगैरह की जड़ें यही हैं।
इन बातों को हम रोजमर्रा की जिंदगी में भी देख सकते हैं ना। जैसे कभी हम छोटी सी बात पर बहुत ज्यादा रिएक्ट कर जाते हैं। हो सकता है वो गुस्सा या दुख असल में कहीं और का हो, जो बस यहाँ डिस्प्लेस हो गया।
हाँ बिल्कुल। या कोई पैटर्न जो हम बार बार दोहराते हैं अपनी लाइफ में, शायद उसकी चाबी बचपन में छिपी हो।
सही कहा। फ्रॉयड के विचार इतने पावरफुल थे कि उनकी कई लाइनें तो कहावतें बन गई हैं। कुछ याद करें?
हाँ जरूर। पहली तो वही सबसे फेमस, सपनों की व्याख्या अचेतन मन की गतिविधियों के ज्ञान का शाही मार्ग है।
बिल्कुल, मतलब अचेतन को समझना है तो सपनों को देखो। दूसरी, एक सपना एक छिपी हुई या दबी हुई पूर्ति है, ये सपने के छुपे हुए और दबे हुए नेचर पर जोर देती है।
तीसरी, सपने के छिपे विचार और सपने की कहानी एक ही बात को दो अलग भाषाओं में कहने जैसे हैं। मतलब व्याख्या एक तरह का ट्रांसलेशन है।
हाँ, और ये भी बहुत दिलचस्प है, लोग कहते हैं सबसे अच्छे सपने वो हैं जो दिन की सोच को जारी रखते हैं, पर हमारे लिए सबसे बेकार और अजीब सपने ही सबसे कीमती हैं, क्योंकि वो दिखाते हैं कि हम क्या छिपा रहे हैं।
क्या बात है, मतलब जितना अजीब सपना उतना गहरा राज।
और आखिर में, सपना नींद का रखवाला है, इच्छाओं को सपने में पूरा करके मन हमें जगाने से बचाता है। ये दिखाता है कि हमारी दिमागी प्रक्रियाएं हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हैं।
तो इन सब गहरी बातों का हमारी रोज की जिंदगी में क्या एप्लीकेशन हो सकता है, हम इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं?
सबसे पहला तो है सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना, अपने सपनों पर थोड़ा ध्यान देना, शायद एक ड्रीम डायरी बनाना। अगर कोई सपना बार बार आ रहा है तो सोचना कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी बस सपने के किसी हिस्से पर फ्री एसोसिएशन करके देखना।
दूसरा, अपनी भावनाओं को बेहतर समझना, वो विस्थापन वाली बात। अगर किसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा गुस्सा या दुख आ रहा है तो रुक कर सोचना, क्या ये यहीं का है या कहीं और से आ रहा है।
तीसरा, क्रिएटिविटी में मदद मिल सकती है। सपनों की दुनिया लॉजिकल नहीं होती, चीजें अजीब तरह से जुड़ती हैं। इस तरह की सोच से नए आइडियाज आ सकते हैं। बहुत से आर्टिस्ट सपनों से इंस्पिरेशन लेते हैं।
चौथा, शायद रिश्तों में मदद मिले। अगर हम समझें कि दूसरा इंसान या हम खुद शायद किसी अंदरूनी डर या इच्छा की वजह से कुछ कह रहा है या कर रहा है, तो शायद थोड़ी ज्यादा हमदर्दी दिखा पाए।
और पांचवा, कल्चर को समझने में। लिटरेचर, फिल्में, आर्ट, इनमें अक्सर सिंबल्स और छिपे हुए मतलब होते हैं। फ्रॉइडियन नजरिए से उन्हें देखना एक नया डायमेंशन देता है।
कोई छोटा सा उदाहरण सोच सकते हैं? जैसे मान लीजिए कोई बार बार सपने में देखता है कि वो एग्जाम में लेट हो गया है या तैयारी नहीं है।
हाँ, तो हो सकता है ये सिर्फ एग्जाम का डर ना हो, शायद ये जिंदगी में किसी और चैलेंज के लिए तैयार ना होने की गहरी फीलिंग हो, या खुद को हमेशा कम आंकने की आदत हो। इस पर सोचने से असली मुद्दे तक पहुंच सकते हैं।
बिल्कुल। या जैसे पर्स खो जाने का सपना, शायद वो पैसे खोने का डर नहीं बल्कि अपनी पहचान या सेल्फ वर्थ खोने का डर हो।
हाँ, पर ये याद रखना जरूरी है कि ये सिर्फ उदाहरण है। हर सपने का मतलब बहुत पर्सनल होता है। फ्रॉइड खुद कहते थे कि सपनों की कोई फिक्स्ड डिक्शनरी नहीं होती।
तो इस पूरी ज्ञान गोष्ठी से सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? मेरे लिए शायद ये कि इंसान का मन कितना गहरा और कॉम्प्लेक्स है। हम सिर्फ वो नहीं है जो हम दिखाते हैं।
हाँ, और हमारी अतार्किक लगने वाली चीजें, हमारे सपने, हमारे डर, हमारी गलतियां, वो भी मायने रखती हैं।
बिल्कुल,
उनसे भी हमें बहुत कुछ पता चल सकता है।
श्रोताओं के लिए शायद तीन बातें याद रखने लायक हैं। एक, आपके अंदर आपके जानने से कहीं ज्यादा है।
दो, आपकी अंदरूनी दुनिया की अपनी एक भाषा है, उसे सुनने की कोशिश करें।
और तीन, अतीत हमेशा हमारे साथ रहता है, वो वर्तमान को प्रभावित करता है।
बिल्कुल, इस किताब ने वाकई साइकोलॉजी को बदल दिया। हमें खुद को खंगालने का एक पावरफुल टूल दिया। अपने अचेतन से थोड़ी जान पहचान करना शायद ज्यादा फ्री महसूस करने की तरफ पहला कदम हो।
मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात फ्रॉइड की वो हिम्मत है कि उन्होंने अपने ही मन के अंधेरे कोनों में झांका और जो मिला उसे बिना डरे दुनिया के सामने रखा।
और मुझे सबसे ज्यादा ये अपील करता है कि हमारे मन के सबसे अजीब फालतू लगने वाले हिस्से भी मीनिंगलेस नहीं है। उनमें भी कोई कहानी, कोई मतलब छिपा हो सकता है। यह हमें खुद को और दूसरों को थोड़ी ज्यादा नरमी से, गहराई से देखने की दावत देता है।
शायद हमारे मन की एक कॉम्प्लेक्सिटी ही उसकी खूबसूरती है। सोचने वाली बात है कि हमारे अपने सपने आज रात हमें क्या कहानी सुनाएंगे।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।